सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संग एक अरसे के बाद फिर से यहाँ जोधपुर आने का मौका मिला है, जहाँ आकर आप सभी के इस विशाल रूप में दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। जिस श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त होकर आप सभी यहाँ पर मिल बैठकर एक सुंदर वातावरण को स्थापित कर रहे हैं, जिस वातावरण को दुनिया भर में देखने की चाहना भक्त के हृदय में होती है, जहाँ पर आनंद और सुकून की महसूसियत हो सके, जहाँ पर संसार के कलह कलेश और वैर ईर्ष्या नफरत का जो शोरगुल है उसकी बजाय प्यार के मधुर तराने गाए जाएं, सुने जाएं और उसी प्यार की महक में जीवन की घड़ियां बिताई जाएं, और उसी प्यार के कारण इस धरती को सजाया और संवारा जाए, ऐसी चाहना ऐसी भावना लिए हुए आज भी आप सभी उपस्थित हुए हैं। राजस्थान में जैसे अभी भी जिक्र हुआ कि पिछले 6-6.5 महीने में तीसरी दफ़ा राजस्थान की यात्रा का आयोजन हुआ, वरना कई कई प्रांत हैं हिंदुस्तान में और हर बरस अनेकों प्रांतों में जाने का मौका मिलता है। जैसा कि इस बरस भी अवसर बना, राजस्थान अक्टूबर के महीने में शायद जो सालाना संत समागम दिल्ली में होता है उससे पहले राजस्थान के ही सीकर, चुरू और पिलानी इत्यादि इन स्थानों पे सत्संग करने का मौका मिला, और फिर उसके बाद समागम के बाद फिर अवसर एक मिला जबकि राजस्थान के चंद स्थान, चाहे वो जयपुर है चाहे सवाई माधोपुर है, इस तरह से टीकड़ी इत्यादि इन स्थानों पे जाने का मौका मिला, दौसा में जाने का मौका मिला, और फिर अभी इस यात्रा में जोधपुर का ये पड़ाव पहला ही पड़ाव है इस यात्रा का, और जहाँ आगे ही अगले 5-6 रोज़ जो दातार की कृपा से प्राप्त हुए हैं राजस्थान में बिताने को मिल रहे हैं, जहाँ पर आप सभी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं पारिवारिक सामाजिक, वहाँ पर आधार इस जीवन का भक्ति को बनाते हैं, इस परमात्मा ईश्वर निराकार को बनाते हैं, और वाकई ही संसार को भी यही प्रेरणा देते आए हैं भक्त कि ये सच्चा आधार हमारे जीवन का ये प्रभु परमात्मा ईश्वर है, ये सत्य है, और इसी का आधार लेकर इसी को ही हृदय में बसा कर इसी की रोशनी में इस जीवन के सफ़र को तय करने वाले वो खुद भी ऊंचाइयों को प्राप्त होते हैं, औरों के लिए भी वो वरदान बनते हैं। जिस सत्य परमात्मा ईश्वर को इस दुनिया की ऐशो इशरत में इंसान भूल जाता है, जहाँ पर दुनिया और दुनियादारी तक किसके जीवन की जीवन सीमित होकर रह जाता है, जिसके कारण इंसान का पतन हमें देखने को मिलता है, तो उसी सत्य का आधार लेकर भक्तजन एक ऊंचे म्यार को हासिल करते आए हैं। युग बीत जाए, सदियां बीत जाए, उनका नाम रोशन रहा है। आज भी हम लगातार ऐसे वलियों, गुरु, पीर, पैगंबर और भक्तों का नाम लेते हैं श्रद्धा के साथ, जिनका जीवन पूरा ही एक सत्य का रूप रहा है, जिन्होंने सत्य को आधार बनाया है, जिन्होंने हमेशा ही सच का वणज और सच का व्यापार किया है। तो ऐसे भक्त महापुरुषों की महिमा जो लगातार गाई जा रही है, चाहे वो सतयुग में हुए, चाहे त्रेता में हुए, चाहे द्वापर में हुए, चाहे कलयुग में हुए, चाहे वो किसी मर्द के रूप में रहे, चाहे औरत के रूप में रहे, चाहे वो किसी बालपन की अवस्था में रहे या किशोरावस्था में रहे, जवानी वाली अवस्था में रहे या बुजुर्गी वाली अवस्था में रहे, चाहे उनको किसी राज्य का राजा के रूप में वो जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला, या फिर कोई साधारण मेहनत मशक्कत करने वाला रहा, कोई भी रहा, किसी रूप में भी रहा, लेकिन क्योंकि उन्होंने सच का आधार लिया, अगर राजा के रूप में जनक हैं तो वो भी इसी सत्य का आधार लेते हैं। आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, रामनवमी के दिन हैं, और जहाँ पर राम जी का जिक्र आता है वहाँ पर राजा जनक का जिक्र आता है कि धनधर राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। यानी कि अगर राजा के रूप में है तब भी वो दुनिया की हकूमत और वो शक्ति और ताकत को विशेषता नहीं दे रहे हैं, वो आधार सत्य को ही ले रहे हैं, राम का ही ले रहे हैं, इस ईश्वर का ही ले रहे हैं। इसलिए वो हकूमत करने वाली जिम्मेदारी उसी खुश नीयत से, खुश असलूबी से निभाते हैं, और दुनिया और संसार के सामने हमारे कितने कितने ऐसे रूप हैं जिन्होंने इसी कदर ये अपने जीवन के सफ़र को तय किया, इस भक्ति को निभाया, एक सुंदर जीवन को जिया, एक दुनियादारी और दुनियावी सिलसिलों से ऊंची अवस्था में रहकर इस सफ़र को तय किया, जो इस संसार में रहते हुए संसार में गलतान नहीं हुए, दुनिया के तमाम नज़ारे ज़रूर रहे, दुनिया के चाहे कितने भी एक रूप और स्वरूप रहे, लेकिन वो उन्होंने कभी भी इस सत्य के तुल्य उनको विशेषता नहीं दी, उन्होंने हमेशा ही इस सत्य परमात्मा को विशेषता दी, इसकी भक्ति को विशेषता दी, उन्होंने इस दुनिया और दुनियावी शक्तियों और ताकतों को विशेषता नहीं दी। तो इस प्रकार से आज भी भक्तजन यही एक इशारा कर रहे थे, यही एक संसार के सामने ये पहलू बार बार जैसे पहले भी लाया गया है, आज भी वही पहलू सामने, छोटे से बच्चे ने भी वही जतन किया, गीत कविता व्याख्यान के रूप में भी वही भाव सामने लाए गए कि इस संसार में हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और हमारी प्राथमिकताएं कौन सी होनी चाहिए। यही महापुरुषों के जो संदेश हैं वो इसी पे आधारित है कि जीवन में हम चयन करते हैं, चयन करने की शक्ति आज़ादी हमें दी गई है, तो चयन हमने करना है तो हमारी प्राथमिकताएं कौन सी हों, किन पहलुओं को हमने विशेषता देनी है। तो इसी चयन के आकर ही इंसान में कितना हमें उसके म्यार का एक रूप सामने देखने को मिल जाता है कि एक चयन करता है सत्य को, इस परमात्मा का, इसकी भक्ति को चुनता है, प्रेम करुणा दया के भाव को चुनता है, निष्काम सेवा वाले भाव को चुनता है, और दूसरे के पास भी चयन शक्ति है, वो चुनता है दुनिया और दुनियादारी को, ये दुनियावी शक्तियों को, एक अहम को, अभिमान को, संकीर्णता और जलन और हर्षोहिवस को, तो उसने ये चुना और जो चुना उसी को हृदय में बसाया और वही उसका रूप बनता चला गया, उसी के अंतर्गत उसके जीवन का सफर तय होता चला गया। लेकिन एक डूबने का सामान इकट्ठा करता रहा और एक तरने वाला और दूसरों को तारने वाला बन गया, एक शिखरों और ऊंचाइयों तक पहुंच गया, एक रोशन मीनार और चमकता सितारा बन गया, और दूसरी तरफ इस कदर पतन हुआ कि नामो निशान मिट गए, कोई नाम लेने वाला नहीं। तो औसत संगत कहने का भाव क्या है कि संतों महात्माओं भक्तों ने जो इंसान के सामने जो पहलू रखे हैं वो हर युग में उनकी महत्ता रही है। ये नहीं कि सतयुग में थी और द्वापर में नहीं, त्रेता में नहीं, या फिर द्वापर में नहीं, या द्वापर के बाद कलयुग आ गया तो कलयुग में नहीं। सूर्य की अहमियत कौन से युग में नहीं थी, सूर्य का की उपयोगिता किस युग में नहीं रही थी। इस धरती के ऊपर जीवन चल रहे हैं, अनाज पक रहे हैं, फल फूल हैं, तो इसमें सूर्य और सूर्य की किरणों का कितना महत्व है और इसका महत्व क्या केवल हिंदुस्तान वालों के लिए है। सूर्य का महत्व अमेरिका कनाडा के लिए भी है, जापान चाइना के लिए भी है, अरबी मुल्कों के लिए भी है। यानी कि इस तमाम एक धरती के लिए है, जीव जंतुओं के लिए है, पेड़ पौधों के लिए है। तो केवल वो आज की तारीख में इसकी महत्ता नहीं, हर युग में, हर सदी में हमेशा सूर्य की अहमियत रही है। और सूर्य इस परमात्मा ईश्वर इस सत्य की एक रचना है। ये सारी कायनात, ये सारी कुदरत कादर की रचना है। कादर और कुदरत, ये दो शब्द हम सुनते हैं। तो कादर है जो ये रचना करने वाला है, रचना और रचनहार, कादर और कुदरत। तो इसी कादरत कादर की कुदरत का हिस्सा ये सूरज चांद सितारे, ये सारे सौर्य मंडल, ये सारी गैलेक्सीज, ये सारी यूनिवर्स, ये सारी इस कादर की रचना है। तो अगर कादर की बनाई कुदरत का महत्व हर युग में है तो फिर इस कादर का महत्व क्यों नहीं है। ये कादर की ही महत्ता हर युग में है, लेकिन बात है कि कौन ये पहचान रखता है, कौन ये नज़र रखता है, कौन ये भाव रखता है। एक हैं जो सूर्य से लाभ ले रहे हैं, इसकी रोशनी से लाभ ले रहे हैं, और एक है सूर्य की रोशनी होने के बावजूद कंबल तान कर लेट जाते हैं। यानी कि रोशनी का सामान ज़रूर है लेकिन खुद को अंधकार में रखना वो पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसे लोग संसार में ये हमेशा रहे हैं। सत्यों की बात करते हैं, अगर भक्त प्रहलाद उस रोशनी का लाभ लेने वाला और उसी का पिता हिरण्यकश्यप वो अंधकार में जीने वाला, उसको अंधकार प्रिय है, वो उस अंधकार में जीता है, वो अहम में जीता है, वो घृणा में जीता है, वह ऐशो इशरत में जीता है। तो दोनों ही रूप हमारे सामने आ गए सतयुग में ही। जिस युग को सबसे महान युग कहते हैं उस युग में भी एक्सेप्शन नहीं रही है कि सिर्फ और सिर्फ उजाला, सिर्फ और सिर्फ भक्ति और प्रेम और करुणा। उसमें भी हिरण्यकश्यप जैसे कितने ही वो पात्र हमें इतिहास के पन्नों और कथाओं में मिल जाते हैं। तो अगर सतयुग में दूसरा पहलू भी मिल जाता है तो त्रेता में भी मिल जाता है, जहाँ पर राम जी का जिक्र, हनुमान जी का जिक्र, शबरी का प्रेम, और वहाँ पर हमें रावण का अभिमान और उसकी बिरादरी के भी ऐसे ऐसे रूप वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि चाहे द्वापर हो, त्रेता हो, हर युग में ऐसे ही रूप हमें देखने को मिलते आए हैं। तो आज भी कलयुग में हम जी रहे हैं और कलयुग में भी इसी प्रकार से लगातार हमारे सामने ये दोनों ही पहलू आ रहे हैं कि एक वो हैं जो मानवता में यकीन रखते हैं, जो इंसानियत में यकीन रखते हैं, जिस भाव से युक्तर आप यहाँ पर मौजूद हैं, जो आदमियत, जो इंसानियत को मजबूत करने में अपने योगदान देते हैं, और एक वो भी इस संसार में काले धब्बे के रूप में है, अभिशाप के रूप में है, जो चारों तरफ मातम फैलाने में लगे हुए हैं, जो चारों तरफ लूट मार में लगे हुए हैं, जो जरा से भी बर्दाश्त का मादा नहीं रखते हैं, जो एक पल में हिंसक हो जाते हैं, जो दूसरों के जीवन में मातम फैलाने में लग जाते हैं। और ये एक सुंदर पहलू वाले जो प्यार से जीते हैं, जो इंसान के काम आते हैं, जो अपने आप को त्याग कर देंगे लेकिन दूसरे को छाया दे देंगे, अपने आप को कड़कती धूप में रख लेंगे लेकिन दूसरे को छाया दे देंगे, उस वृक्ष की तरह जो सारा दिन कड़कती धूप में रहता है लेकिन दूसरों को छाया प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही पहलू हमारे सामने हैं, रात और दिन वाला, एक कांटे और फूल वाला, ये दोनों ही पहलू संसार में रहे हैं। लेकिन मुबारक वो माने गए हैं जिन्होंने सही चुना, जिन्होंने सत्य को चुना, जिन्होंने सत्य को आधार बनाना चुना, जिन्होंने इसी का नूर घटघट में देखना पसंद किया, या वो नज़र जिनको मिल गई और उसी नज़र के तहत एक विपरीत भावनाओं से उभरते चले गए, भलाई ही भलाई मांगते चले गए, भलाई करते चले गए, इस कदर उनकी ऊंची अवस्था ये होती चली गई। तो आज भी उसी ऊंची अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही महापुरुष संत जन प्रेरित कर रहे हैं। बच्चा भी कह रहा है कि सत्य से जुड़ जाओ, इस सत्य को प्राप्त कर लो, इस सत्य को आधार बना लो, ये सत्य जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाला है, जो काल के अधीन नहीं है, जो समय से समय के साथ बदलता नहीं है, जो स्थान के साथ जिसमें बदलाव नहीं आ जाता है, मौसमों में तब्दीलियां होती हैं और मौसम में भी स्थान और स्थान के साथ बदल जाता है। अगर यहाँ गर्मी के दिन आजकल हैं लेकिन इसी धरती के वो हिस्से भी हैं जहाँ एक ठंड पड़ रही है, जहाँ पर बहुत सर्दी है, यानी कि मौसम भी स्थान के साथ बदल गया, समय के साथ बदल गया। इसी तरह से हर चीज़ में बदलाव, बालपन किशोरावस्था में, किशोरावस्था जवानी में, जवानी बुजुर्गी में, और फिर बुजुर्गी के बाद भी फिर आखिर खाक की ढेरी में तब्दील हो जाते हैं, खाक का पुतला खाक की ढेरी में तब्दील हो जाता है, और वही खाक भी नहीं रहती, वो भी हवा उड़ा के ले जाती है। तो इस प्रकार से हर चीज़ बदलाव में है, लेकिन ये सत्य, ये शाश्वत है, ये बदलाव में नहीं है, ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह, हर काल, हर स्थान के ऊपर एक सरीका है। जलस्थुई थलस्थुई, जल थल मय्यल पूर्या स्वामी सृजनहार, के जल में, थल में, दसों दिशाओं में, कणकण में तू ही विराजमान है। तो इसको ही सत्य कहा है और इसी से नाता जोड़ने की प्रेरणा हो रही है कि जुड़े तो इस सत्य के साथ जुड़े, लेकिन इससे नाता तोड़कर और झूठ के साथ जुड़ के जीवन इंसान जीते हैं। इसी के कारण ये दुर्दशा है, इसी के कारण इंसान उत्तम जन्म पाकर भी जानवर और पशुओं से बदतर इसकी हालत बनती चली जा रही है। इसी कारण इस धरती को स्वर्ग बनाने के बजाय इसको दोजख बनाता चला जा रहा है। इसका कारण यही है कि इसने वो रास्ता नहीं अपनाया जो अपनाने लायक था। इसने वो चाल नहीं चली जो चलने लायक थी, जिस चाल की इससे उम्मीद की जाती थी, जो जानवरों से नहीं उम्मीद थी, जो पशुओं से नहीं उम्मीद की जा सकती, जो सिर्फ और सिर्फ इंसान से उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंसान को ही वो सोचने समझने की सबसे अधिक ताकत दी है। होने को 84 लाख योनियों का जिक्र आता है, लेकिन 84 लाख योनियों में से केवल और केवल एक योनि इंसानी योनि, जिसमें सबसे अधिक सोचने और समझने की ताकत और शक्ति जिसको दी गई है। और इतनी पीड़ाजनक बात के जिसको जिस योनि को सबसे केवल अधिक किसको दी गई, वो सोचने समझने की ताकत, वो विश्लेषण करने की ताकत। और यही है जो कदम कदम पर ये भटकता है, यही कदम कदम पर गिरता है, यही कदम कदम पर डूबने के सामान इकट्ठा करता है। ये कैसी विडंबना है, यानी कि वो समझ होते हुए भी ना समझ, वो सोचने की शक्ति रखने के बावजूद भी मूर्ख। इस तरह के प्रमाण ये इंसान देता आ रहा है। और भक्त जन हैं जो डूबते हुए इंसान को उभारने के प्रयास करते हैं, इंसान को सुचेत करते हैं कि इंसान हरगिज वो मार्ग ना चुन जिसके कारण डूबना निश्चित है, हरगिज उस रास्ते पे ना चल जिस रास्ते पे चलने से इस लोक और परलोक दोनों जहानों में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ऐसे भाव से युक्त होकर ना इस सफ़र को तय कर, एक एक तेरा कदम, एक एक पल वो जो है वो बोझल हो जाए, तो ये बोझल अपने आप को, अपने इस जीवन को ना कर, ये बोझ उठाने का, उतारने का वक्त है, ये बोझ से निजात पाने का ये वक्त है, ये अवसर, ये मौका सुनहरी है। इस प्रकार से ये इंसान को संदेश और पैगाम ये महापुरुष संत जन ये देते आए हैं, और जिन्होंने इसको इस रूप में समझ लिया, इस रूप में इसको स्वीकार कर लिया, इसको धारण अपना लिया, उस रास्ते पे चल निकले, उस तरफ अपना मुख ये रुख कर लिया, वाकई उसने सही मायनों में समझदारी का इस्तेमाल किया, वही विवेकी जन साबित हुए। और इसीलिए महापुरुष प्रेरित ये भी करते हैं कि हम संतों का संग कर लें। अगर इस सत्य परमात्मा के साथ नाता जोड़ने के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है, तो उसके लिए फिर साथ ही उतना ही जोर इस तरफ भी दिया जा रहा है कि इसके ये संभव भी तभी होगा अगर संतों और ब्रह्म ज्ञानियों का संग कर लेंगे। अगर ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल जाएगा, संतों का संग मिल जाएगा, तो तभी वास्तविकता में ये कार्य तुम्हारा और आसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ तक महापुरुष कह देते हैं कि खोजना है तो सत्य को नहीं, खोजना है तो ब्रह्म ज्ञानियों को खोजो, कि वाकई जिसके कारण ये काम आसान हो जाएगा। वरना सारी उम्र लगाने वाले लग गए, सारी उम्र लगा दी, शरीरों को सुखा दिया, नाना प्रकार के साधन अपना लिए, लेकिन फिर भी हाथ ना आया, ये सत्य हाथ ना आया, ये ब्रह्म ज्ञान हाथ ना आया, ये भटकन ही रही कायम, और ये आवागमन के बंधन में आत्मा जकड़ी रही। तो इसलिए इस बात के ऊपर भी साथ साथ इस पहलू की तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है कि वही वास्तविकता में और भी ऊंचे भाग्य वाले हो जाते हैं जिनको ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल जाता है। मीराबाई को रविदास जी का संग मिल जाता है, और वही काम कितना आसान हो गया कि जो इस प्रकार से वो वेदना और बिरह जो शाम के असली रूप से अभी वंचित थे, वही गुरु रविदास जी के चरणों में जाकर वो प्राप्त हो गया, यानी कि ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल गया। इसी प्रकार से जिस जिस को भी जब जब भी ऐसा संग मिला है, उन्हीं के हिस्से में ये सच रूपी दात आ गई है, ये सच्ची दौलत उसके हिस्से में आ गई है, जो सदैव कायम रहने वाली है वो दौलत हिस्से में आ गई है। तो ऐसी दौलत के भागीदार हर कोई बने, इसीलिए महापुरुष संत जन ये एक पैगाम और ये संदेश ये दे रहे हैं, ताकि ये केवल कानों तक सीमित ना रह जाए, क्योंकि कानों में आवाज़ तो पड़ रही है, लेकिन कानों तक ना सीमित रह जाए, इसके ऊपर मनन किया जाए, इसके ऊपर विचार किया जाए, और फिर इसको हृदय में बसाया जाए, फिर ये कदम उस ओर बढ़ाए जाए, केवल सुन कर ना रह जाए, सुनी अनसुनी ना हो जाए, एक कान में पड़ी और दूसरे कान से ना निकल जाए, ये सुनी अनसुनी नहीं करने लायक है। हाँ, दुनिया की निंदा बखीली तो सुनी अनसुनी करना बेहतर है। दुनिया में कीचड़ उछालने वाले जो शब्द हैं वो सुने अनसुने करने तो बेहतर हैं। जो सुनकर हम उसको धारण करके अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मारने वाले बन जाएं, उस स्थिति तक पहुंचने से पहले वो सुना अनसुना कर देना बेहतर है। वो लिहाज से तो सुना अनसुना करना मुबारक है, लेकिन ये सुनकर अनसुना करना भारी पड़ जाएगा। जो महापुरुष कहते हैं, जो संत कहते हैं, जो वो हमारे कल्याण के लिए सामने ये आईना रखते हैं, तो वो सुना अनसुना करना हम अपने लिए ही बोझल बना लेते हैं, हम अपने लिए ही नुकसान का कारण बना लेते हैं। इसलिए सुना अनसुना नहीं करना, ये सुनकर इसको विचारना है और इसको अपनाना है, उसी अनुसार इस जीवन के सफ़र को तय करना है। वही वास्तविकता में एक सही मायनों में एक सूझबूझ वाले माने जाते हैं, वही वास्तविकता में ठीक चयन करने वाले बनते हैं, वही हैं जो लोक और परलोक दोनों जहानों की बाजी जीतने वाले बनते हैं। तो आज यही अरदास, यही प्रार्थना की जा रही है कि दातार प्रभु कृपा करे कि सबको ऐसी तौफीक बख्शे, ताकि सभी इंसान अपना उद्धार कर पाएँ, अपना कल्याण कर पाएँ और सही मायनों में अपने जीवन में हरियाली ला पाएँ। चाहे होने को ये रेगिस्तानी इलाका है, एक रेत ही रेत चारों तरफ। अभी राजस्थान की यात्राओं का तो दास ने जिक्र किया, और इस वर्ष का आगमन भी रेतीले इलाके में ही हुआ, जबकि दास उस वक्त जब नए वर्ष का आगमन हुआ तो तब दुबई में था, और उस यात्रा में मस्कट और बहरीन जाने का मौका, दुबई एमिरेट्स में जाने का मौका मिला, तो वो भी सारा रेतीला इलाका। लेकिन रेतीले इलाके में भी हरियाली जहाँ जहाँ स्थापित होती है कितना सुंदर लगता है। और वाकई ही इसी तरह से ये हमारे जीवन में भी हरियाली तभी आती है जब हम सही मायनों में अपने कदम उस ओर बढ़ा लेते हैं या ऐसी अवस्था बना लेते हैं। उसी के कारण हमारे जीवन में ये हरियाली आ जाती है, उसी के कारण शीतलता आ जाती है, उसी के कारण हमारा रूप निखर जाता है, जो सीरत के रूप में है, सीरत और जिस्म के रूप में नहीं। वो तो जो जिस्म मिला उसमें हमने थोड़ा और कुछ ऐड करके थोड़ा और उसको सुंदर रूप दे दिया, लेकिन जिस खूबसूरती की बात हो रही है वो सीरत की है, वो भावनाओं की है, वो अवस्था की है। तो वो एक सीरत सुंदर बनाकर, वो अवस्था सुंदर बनाकर सभी इस प्रकार से मुख उजला करते चले जाएं। इसी शुभकामना, इसी अरदास, इसी प्रार्थना के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा, क्योंकि समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और अंत में फिर से अपनी खुशी जाहिर करेगा। जो यहाँ जोधपुर में इतने वर्षों के बाद आकर आप सभी के दर्शन करके प्राप्त हुई है, और ऐसी ही अरदास की दातार कृपा करे कि ऐसे अवसर ऐसे मौके ये बनते चले जाएं और ये दर्शन मिलते चले जाएं, भक्ति वाली भावनाओं को देखने के मौके मिलते चले जाएं, और संसार का उद्धार करने के लिए जो उपकार हो रहे हैं वो उपकारियों के दर्शन करने के मौके मिलते चले जाएं। ऐसी ही शुभकामना के साथ दास आपसे ज़्यादा चाहेगा। सत्संग जी धन्य।